الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم علم عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں بالترتیب درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم آٹھویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139 تک یہ درس سن چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 140 نمبر سے اس درس پاک کا آغاز کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سی آیات مبارکہ اور ان کا عام فہم، ترجمہ، تفسیر انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں، بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جہالت کی بنا پر جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے انداز تھے اور کئی قبیلے تو مشہور ہی باقاعدہ اس طور پر تھے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اب یہ اولاد کو قتل کرنا بیٹیوں کے اعتبار سے یہ بکثرت عمل ان میں پایا جاتا تھا، بیٹیاں قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے اور کئی لوگ بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے۔ اس اعتبار سے ان کے خرچے، ان کے معاملات، یہ کیسے ہم چلائیں گے، مار دیتے تنگ دستی کے خوف سے۔ اب اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ یہ لوگ تباہ ہوئے، یعنی ان کے لیے خسارہ ہے دنیا میں بھی، اس لیے کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد آدمی کے لیے بڑھاپے کا بھی ایک سہارا ہے، اولاد طرح طرح سے دنیا کے اندر جہاں اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، وہاں اولاد اخروی اعتبار سے صدقہ جاریہ کے طور پر کہ اگر اولاد نیک ہے تو اس کی راحت ان کے اعمال کی وجہ سے قبر میں بھی اللہ پاک والدین کو وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اولاد کو قتل کرنا دنیا میں بھی ایک طرح کا اپنا سہارا ختم کرنا، دنیا میں اس نعمت کو ختم کرنا، یہ دنیاوی نقصان خسارہ، اخروی بھی اللہ پاک کی چونکہ یہ نافرمانی ہے تو آخرت بھی ان کی تباہ ہوتی ہے، یعنی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں اولاد کے قتل کا ایک بہت بڑا جو سبب ہوتا تھا وہ تنگ دستی کا خوف۔ ہم مسلمان ہیں، مسلم معاشرہ ہے، مگر پھر بھی تنگ دستی کے خوف ہیں اور آج بھی لوگ طرح طرح کی اس طرح کے اقدامات وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور تنگ دستی پر بھی اللہ پاک نے الگ سے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جو ڈر خوف پیدا ہو گیا آج بھی معاشرے میں لوگوں کے ہے کہ کیسے چلائیں گے، آگے کے معاملات کیسے چلائیں گے، اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد بچیوں کو پھینک دینا، بچوں کو پھینک دینا، ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جانا اور طرح طرح کے۔ جی ہاں، آپ کو ناظرین کرام حیرت ہو رہی ہوگی لیکن اس طرح کے واقعات آئے دن اخبارات میں بھی چھپتے ہیں اور اب تو اس کی باقاعدہ رپورٹس بنائی جاتی ہے اور ہوتی کہ اس طرح اتنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ وہی زمانہ جاہلیت والی سوچ ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو دنیا میں آتے ہی یا تو ایسے छोड़ जाना, बेकार कर देना या मार देना, या माँ के पेट में ही जब पता चलता है बिलखसूस के बेटी है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो उस वक्त ये कत्ल का इकदाम कर लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये याद रखना चाहिए कि जब बच्चा या बच्ची अपने माँ के शिकम में 120 दिन ये गुजर जाते हैं, यानी 4 महीने गुजर जाते हैं, तो अब उनके अंदर एक रूह डाल दी गई है, अब उनमें रूह आ चुकी है, तो अब उनका वो हमल ख़त्म करवाना, अब हमल गिराना, ये बाकायदा कत्ल है। ये ऐसे ही कत्ल है जैसे जिंदा आदमी को मारना। इसलिए शरीयत मुतारा ने वाज़े तौर पर इसको ये बयान फरमाया कि अब ये रूह आ चुकी है, अब इसे करना तो ये कत्ल का गुनाह है, और इस मुद्दत से पहले पहले भी ख़त्म करवाना, अमल साकित करवाना ये जायज़ नहीं होता। अलबत्ता अगर ये 4 महीने की मुद्दत हमल पूरी नहीं अगर हुई, इससे पहले पहले कोई वाकई ऐसी ज़रूरत शरिया आ जाती है कि जिससे उसकी माँ की जान को ख़तरा है, और इस तरह के कोई मामलात वाकई यकीनी तौर पर साबित हो जाते हैं, तो फिर उसकी तो इजाज़त है, मगर रूह डलने के बाद, रूह फूंक जाने के बाद ये इसकी इजाज़त नहीं है कि ये फिर कत्ल के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह हमारे मुसलमानों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए और इन चीज़ों से बचने की तौफीक दे। तो इस आयते मुबारका में बेसिक तो एक ये औलाद का कत्ल नाहक, इसकी मजम्मत को बयान किया। आगे फरमाया गया कि जो अल्लाह पाक ने उन्हें रिस्क दिया है उसको वो हराम जानते हैं, ये अल्लाह पर इफ्तरा है, यानी बोहतान है, इल्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि मुशरिकीन ने कुछ ऐसे जानवरों को जो ख़ास अपने बुतों के नाम या दीगर, और तो वो उसको खाम खाई ये इसको अपने ऊपर हराम करार दे देते कि ये हराम है, ये हराम है, इसको हम ज़बा नहीं करना, इसको खाना नहीं। तो ये जो अल्लाह पाक ने रिज़्क अता फरमाया है उसको खाम खाई अपने ऊपर हराम करना, और ये हुक्म अल्लाह पाक ने ईमान वालों को भी इरशाद फरमाया है, ईमान वालों जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की उसे हराम ना करो, उसे अपने ऊपर हराम ना करो, ना हद क्रॉस करो। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हलाल करदा है वो हलाल है, जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हराम करदा है तो वो हराम है। इसके अलावा हम अपनी तरफ से ना किसी चीज़ को हराम करार नहीं दे सकते, हराम करार नहीं दे सकते। तो हराम है तो उसके लिए वाज़े दलील चाहिए। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वहुवल लदी अनशा जन्नातिम मअरूशातिम व गैर मअरूशात وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين। और वही है जिसने कुछ बागात जमीन में फैले हुए और कुछ ना फैले हुए तनों वाले और खजूर और खेती को पैदा किया जिनके खाने मुख्तलिफ हैं, और जैतून और अनार को पैदा किया, ये सब किसी बात में आपस में मिलते हैं और किसी में नहीं। जब वो दरख्त फल लाए तो उसके फल से खाओ और उसकी कटाई के दिन उसका हक दो और फजूल खर्ची ना करो, बेशक वो फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यहाँ अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला उसका भी जिक्र फरमाया कि अल्लाह पाक वही ज़ात है कि जिसने ऐसे कुछ फल ज़मीन के अंदर, बाद वो हैं कि जो फैले हुए हैं और बाद वो हैं जो फैले हुए नहीं हैं, तनों वाले हैं, यानी आप देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जैसे खरबूजा है, तरबूज है और दीगर कई ऐसे हैं कि जो ज़मीन के अंदर फैले हुए हैं, खरबूजा तरबूज वगैरह ये कुछ दरख्तों से नहीं उतरते, यानी जो वजनी है गोया के भारी हैं, तो वो अल्लाह पाक ने उनको रखा ही ज़मीन पर हैं, वो ज़मीन में, और कुछ वो जो तने वाले हैं ये दीगर जो दरख्त हैं कि जिनके ऊपर फल लगता है, अब चाहे उसमें अमरूद है, माल्टा है, किन्नू है और आम है, ये सारे इसी तरह हैं। फिर इरशाद फरमाया कि अनार जैतून वगैरह कि ये जिनकी सूरतन शक्लन तो ये कुछ ना कुछ आपस में मिलते हैं या इनके पत्ते मिलते हैं, मगर जायका मुख्तलिफ है, टेस्ट इनका मुख्तलिफ है। अच्छा इस तरह अगर आम की ही बात करें तो कितने किस्म के आम हैं, नाम आम ही है, जींस वही है एक तरह की, लेकिन उसके अंदर कितनी अकसाम है, और इसी तरह और फलों के अंदर ही ये रब तबारक व ताला की कुदरत कामिला है, सुबहानअल्लाह। आगे अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया है कि ये फल खाओ जब ये फल दें, लेकिन एक हक बयान कर दिया, वआतु हक्कहु यौम हसादी, और कटाई के दिन इसका हक दो, यानी इस फसल उतारने का जो हक है वो दो। वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यहां जो इरशाद फरमाया तो ये जमीन की फसल से जो कुछ आदमी को हासिल होता है उसकी जक़ात है, उसकी जक़ात यानी फसलों की जक़ात, बागात की जक़ात, पैदावार की जक़ात। ये भी याद रखें कि उसी तरह जैसे हम जक़ात अदा करते हैं, नॉर्मल कैश कारोबार कर रहे हैं जो कुछ भी हैं, तो जो अमवाले जक़ात हैं उसकी जक़ात देते हैं, इसी तरह फसल के अंदर भी जक़ात के अहकाम आते हैं, बागात के अंदर भी जक़ात है, और उसे उशर कहा जाता है, वो जमीन का और वो उस पैदावार का हक अदा करना है। और इसके बारे में उसूल हदीस पाक में यह वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया, वो जमीनें जो बारिश नहर चश्मों से सैराब हो उसके अंदर उशर दसवां हिस्सा, और वो जिसमें खींच कर पानी डाला जा रहा है तो उसमें निस्फ उशर यानी बीसवां हिस्सा या 5%। याद रखें कि वो फसलें के जिसमें बारिश के जरिए सैराब हो या नहरी और दरिया इस तौर पर पानी दिया जा रहा है तो वहां उशर है। आम तौर पर 1 लाख पे 2500 आप जकात अदा करते हैं, लेकिन यहां उशर है यानी दसवां हिस्सा, 1 लाख है तो 10,000 रुपए बतौर उशर के वो अदा करने, और इसके अहकामत वही हैं जो जकात के अहकामत हैं, यानी जिसको अदा करना है। और याद रखें उशर ये हर एक पर लाजिम होता है, चाहे उशर अदा करने वाला खुद शरीफ फकीर ही क्यों ना हो, वो मकरूज ही क्यों ना हो, और ये कुल पैदावार का उशर अदा करना है। ये नहीं होता कि सारे अखराजात और ये वो सब कुछ निकाल कर इसका उशर अदा करना है, नहीं, पैदावार का अदा करना ये उशर कहलाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया है वआतु हक्कहु यौम हसादी, पैदावार कम हो ज्यादा हो इसका कोई फर्क यहां पे नहीं है, इसका कोई निसाब नहीं है कि इतनी पैदावार हो तो ये उशर लाजिम होता है वरना नहीं, ऐसा नहीं। साल में अगर 2 फसलें हैं तो 2 फसलों की, साल में 3 पैदावार हो रही हैं तो 3 पैदावार के उशर अदा करना होगा। ये खास अल्लाह पाक ने जमीन से जो कुछ उगे उस पर रखा है, क्योंकि जमीन से उगाना आम फैक्ट्री अगर कोई लगा ले और वो कुछ सामान बनाए तो ये मुमकिन है, वो सामान बना भी सकता है, कंपनी से जो कुछ तैयार हो वो बनाएगा और उसे आगे सेल करेगा बेचेगा, तो ये तो सामान बन सकते हैं। मगर जमीन में बीज डाल देना, अब जमीन से जो कुछ निकले इसको, वो बीज को तनावर दरख्त बनाना, उस पर फल आना या इससे फल उगा देना, ये अल्लाह की कुदरत कामिल है, इसलिए रब ताला ने इसमें अपना हक ये रखा है कि ये अदा करो। आगे जो फरमाया इसराफ, तो इसराफ की कई तरह की डिटेल तफसील वो बयान की गई है कि इसराफ से मुराद क्या है। अल मुख्तसर, बेजा खर्च करने को भी ये इसराफ, गुनाह के कामों में खर्च करने को इसराफ, तो तरह तरह की इसकी तारीफें वो बयान की गई हैं, और इसराफ और तबजीर के हवाले से भी ये 15वें पारे में भी अल्लाह पाक ने जहां तबजीर के हवाले से भी वो मुमानत बयान फरमाई तो कुछ उलमा ने उसमें फर्क बयान किए। अल खुलासा यही है, और ऐसी जगह खर्च करना जहां शरण मुमानत हो या उर्फन और अखलाकन मना हो, ये भी इसको फजूल खर्ची, तो खुलासा यही निकला कि जहां खर्च करना बनता हो तो वहां दिल खोल कर खर्च किया जाए, वो फजूल खर्ची और इसराफ में नहीं आएगा। मगर जो अल्लाह की नाफरमानियों में खर्च किया जा रहा हो और या गुनाह के कामों में खर्च किया जा रहा हो तो ये जरूर काबिले मुजम्मत, और इसको भी इसराफ फरमाया है। आगे अल्लाह पाक फरमाता है वमिनल अनआमी हमूलतं व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन पर बिछे हुए जानवर पैदा किए, यानी ये पीछे पूरा एक अंदाज चलता हुआ आ रहा है कि अल्लाह पाक ने किन को पैदा किया, ये हमारे नफे के लिए, और अल्लाह ने तुम्हें जो रिज्क अता फरमाया उसमें खाओ और शैतान के रास्तों पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी छुपा है ऐसे कुछ है कि जिनको आप बोझ लादने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर से बात करें तो ट्रक गाड़ियां मुख्तलिफ ये जराए एक से दूसरी जगह पर सामान मुंतकिल करने के लिए, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां हमारी ये गाड़ियां जवाब दे जाएं, जहां कुछ भी ना पहुंचे तो वहां फिर जानवरों के जरिए सामान वहां पहुंचाया जाता है। आप जरा पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, आप और कुछ ऐसे इलाकों में, तो वहां उनको इन्हीं पर, खच्चर पर, गधे पर, ऊंटों पर ये आज भी काम आते हैं। और आज भी गांव देहातों से बकायदा जो दरख्त काटे जाते हैं, लकड़ियां लेकर बाहर आते हैं, वो मंडियों में आते हैं, मार्केटों में आते हैं, तो हर एक के पास गाड़ियां नहीं है, लेकिन उनके पास यही खच्चर है या उनके पास ऊंट है या बैल है। उनके खेतों के लिए भी ये काफ़ी होते हैं, बैल बिलखसूस, और फिर सामान लाद कर शहरों में जो लाते हैं तो उसके लिए ऊंट, खच्चर और बैल वो इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ ऐसे हैं कि जो बोझ लादने के लिए ये अल्लाह ने इन जानवरों को पैदा किया, और कुछ ऐसे जो वैसे नहीं है, तो उनमें से जो हलाल है। अब जैसे बकरी है तो ज़ाहिर है बकरी उस तरह के तो फ़ायदे नहीं दे सकती कि उसका बोझ लादा जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हें हमारे लिए हलाल फरमाया, तो इसमें क्या है, खाओ, लेकिन शैतानी रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा दुश्मन है। शैतानी रास्ता यहाँ किस चीज़ का, कि जो उस वक्त जहलियत के दौर में अहले जहलियत वाले वो कुछ जानवरों को हराम खाम खा करार दे देते कि इसको नहीं खाना, तो ये शैतानी रास्ता ही है। जो अल्लाह पाक ने हलाल किया है उसे खाओ। आगे फरमाया समानियत अजवाज मिनदनी व मिनल माजिसनैन उल आज़करैन हर्रम अमिल उनसयैन अम इश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने आठ नर व मादा यानी जोड़े पैदा किए, एक जोड़ा भेड़ से और एक जोड़ा बकरी से। तुम फरमाओ क्या उसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा, या वो जिसे दोनों मादा जानवर पेटों में लिए हुए हैं? अगर तुम सच्चे हो तो इल्म के साथ बताओ। यहां पर अल्लाह पाक ने जानवरों की भी ये आठ तरह की अकसाम बयान की, यानी जोड़े बयान किए, जैसे ऊंट है और इसी तरह भेड़, बकरी और गाय, और इनके नर और मादा ये बयान किए, तो ये कुल हो गए आठ जानवर। अच्छा, यहां जो बयान करना मकसूद है वो इनकी हिल्लत ही नहीं है बयान करना मकसूद, कि ये हलाल है इसके अलावा बकिया हलाल नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां मकसूद ये था कि उस वक्त अहले अरब और उस जाहिलियत के दौर में जो जानवर पाए जाते थे वो यही पाए जाते थे, कि जिनमें ज्यादातर यही, जिनमें गायें, बकरी, भेड़ और ऊंट, और इन्हीं में से वो हराम करार देते थे बाज को। तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इनके नर को हराम किया या मादा को या दोनों को या इनके पेटों में जो कुछ है इनके बच्चों को। कुछ नर को हराम करार देते थे, कभी दिल चाहे तो मादा को हराम करार दे दिया, कभी इससे जो पैदा होगा वो हराम है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये सब तुम्हारी खतराएं हैं, तुम्हारे खामखा की ये बातें, इनमें से कोई भी हराम नहीं, नर मादा और उससे जो पैदा हो इसमें से कोई भी हराम नहीं, ना ही हराम जानो। अगर तुम हराम कहते हो तो फिर इसकी कोई दलील लाओ। इस आयत से हमारे उलमा ने एक उसूल भी बयान किया कि जो हराम कहता है दलील वो देगा, जो किसी चीज को हराम कहना दलील उसके जिम्मे, हलाल कहने वाले पर जिम्मे दलील नहीं है, हलाल कहने वाले के जिम्मे। आज कई चीजों की लोग दलीलें मांगते हैं, इसकी दलील, इसकी दलील, इसकी दलील। अच्छा, उन्हें कहा जाए कि ये हराम कहाँ है वो दलील आप दे दें। या अल्लाह पाक ने भी ये इरशाद फरमाया कि ये नर मादा जो जानवर हैं, चाहे भेड़, बकरी, ऊंट और गाय में से, ये अल्लाह ने इन में से किसको हराम करार दिया है, क्या नर को या मादा को या दोनों को या इनकी औलादों को? तो दलील उनसे कहा गया लाओ दलील, तुम इसकी दलील लाओ किसको हराम किया है, तो इनमें से कोई भी हराम नहीं है। और यहां जो ये जिक्र किए हैं इससे फिर ये मफहूम नहीं निकाला जाएगा कि चूंकि ये आठ जानवरों का जिक्र हुआ बकिया हराम हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हराम के लिए दलील चाहिए। अल्लाह पाक ने जिन्हें हलाल फरमा दिया है वो हलाल है। आगे इरशाद फरमाया व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन कुल आज़करैन हर्रम अमिल उनसयैन अम इश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन अम कुंतुम शुहदा इज वस्साकुमुल्लाहु बिहादा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्लन्नासा बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ने नर और मादा का एक जोड़ा ऊंट से और एक जोड़ा गाय से पैदा फरमाया। तुम फरमाओ क्या उसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा, या वो जिसे दोनों मादा जानवर अपने पेटों में लिए हुए हैं? क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें यह हुक्म दिया, तो इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि लोगों को अपनी जहालत से गुमराह करे, बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यावी नाज़रीन किराम, उन्हीं आठ किस्मों को बयान फरमा दिया और इसका भी एक पस मंजर है, एक शान नज़ूल है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन जानवरों की हिल्लत के और हलाल होने के बारे में जब बयान फरमाया, तो जो जाहिलियत वाले थे तो वो उनमें से कुछ आ गए और वो माज़ल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे कि आपने इनको ये कह दिया, आपने इनको ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही कुरान की जो दलील है इस तौर पर बयान फरमाया कि तुम ये बताओ कि ये तुम जो हराम कहते हो इसको, अल्लाह पाक ने तो ये जानवर जो आठ किस्म के बयान किए हैं, ऊँट नर्मदा, गाय नर्मदा, बकरी नर्मदा और भेड़ नर्मदा, ये अल्लाह पाक ने लोगों के नफे के लिए बयान किए। इन में से हुरमत किस तरफ से आई है, नर की तरफ से आई है या मादा की तरफ से आई है या जो इनके पेटों में जो कुछ इनसे पैदा हो उसकी तरफ से? अगर तो तुमको जो पेट में है जो कुछ इनसे पैदा हो तो फिर सारे ही हराम हो गए, फिर तो कोई भी बचेगा नहीं। अगर नर की तरफ से तो फिर हर नर हराम होगा, अगर मादा की तरफ से तो हर मादा हराम होगा। तो ये दलील सुनकर वो लोग ऐसे साकित हो गए, खामोश, और बतौर खास उनका खतीब खामोश हो गया कि ये ऐसी एक दलील थी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने जो इसे बयान फरमा दिया और फिर अल्लाह ने इंशाद फरमाया, आम कुन तुम शुहदा इज वस्साकुमुल्लाह बिहादा, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया, यानी अल्लाह पाक का जो हुक्म है क्या तुम्हें बराए रास्त मिला है? ऐसा तो है नहीं। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही तो यहां से भी ऐसी हुरमत का हुक्म बयान नहीं हो, तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो, तुम ये इफ्तिरा बांध रहे हो। तो और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और आज भी बाज़ुकात आयतें कुरान की पढ़कर इस्तिदलाल ऐसे गलत कर लेते हैं, और वो भी कई ऐसे लोग जो अल्लाह पर एक तरह का झूठ बांध रहे होते हैं। आज छोटी छोटी बातें पर चीज़ों को हराम करार देते हैं, खाने के सामने रख के अगर फातिहा पढ़ दी, भाई अल्लाह रसूल का नाम ही लिया है, कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ के दुआ मांग दी है, इसको हराम कैसे कह रहे हो आप? इस खाने को ऊपर क्या चीज ऐसी कि जिसको आप हराम कह दें? तो ये भी क्या है, ये भी दीन के मामलात पर इफ्तिरा है, अहकाम शरा पर इफ्तिरा है, इसको कैसे हराम कह दिया जब तक को हुरमत की वजह नहीं है? और कुरान पढ़ा जा रहा है या तस्बीहात पढ़ी जा रही है, दुआ अल्लाह से की जा रही है, फिर हराम खाना हो जाए? कैसे हराम हो जाए? क्या खाना सामने रखकर पढ़ना मना है? तो क्या आप दुआ पढ़ के नहीं खाना खाते? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना नहीं खाते? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपने कई मौके पर खाना सामने रखकर कुछ पढ़ा और उस खाने में बरकतें हासिल हो जाए? बतौर खास जो दावत मशहूर के चंद लोगों का खाना था, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कुछ पढ़ा जो चाहा, अब वो क्या पढ़ा होगा? कुरान पढ़ा होगा या अल्लाह पाक के नाम लिए होंगे या तस्बीहात की होंगी? कुछ तो पढ़ा होगा और यही पढ़ा होगा, तो अब वो भी तो सामने खाना ही था। तो सामने खाने से यूं ऐसी चीजें हराम नहीं हो जाती। तो याद रखें कि जब वो चीज जो हराम ना, उसे हराम करार देना, ये अल्लाह पर झूठ बांधना है, ये इफ्तिरा है, इससे जरूर बचना वो लाजिम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद का इल्म और फहम अता फरमाए और कुरान की आयतों को कमा हक़ुहु समझने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे इजाजत चाहते हैं, फी अमानिल्लाह।
कुरान 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 अस